मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं भारत और वासेनार व्यवस्था इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। सच पूछे तो खबरें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अखबारों में जो मुझे तीन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट मिले हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे थोड़े महत्वपूर्ण मालूम पड़े हैं, पहले मैं उधर आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि यदि मैं ध्यान न दिलाऊं तो स्टूडेंट उन्हें मिस कर देते हैं, जबकि उन्हें मिस नहीं किया जाना चाहिए। एक है दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट, युवा भारत अगले 15 वर्षों में क्या चीन को पछाड़ेगा। देखिए, हम बकायदे जनांकिकी लाभांश की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, भारत उस स्थिति में आ गया है। इसको लेकर के एक बहुत ही छोटा सा, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण पीस मुझे जान पड़ा। पहली बात तो है कि इसमें बताया गया है कि कैसे चीन अब उस स्थिति से बाहर आ गया। एक दौर था जब उसको इसका लाभांश मिला और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया और आज उसने अपने आप को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तब्दील करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन उससे क्या गलती हुई, क्योंकि वहां की महिलाओं की प्रजनन शक्ति धीरे धीरे उसमें काफी कम हो गई और इसकी वजह से जो नए बच्चे थे वो नहीं हुए। तो जब नए बच्चे नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि युवा लोगों की जो संख्या होगी वो कम होगी, वृद्धों की संख्या बढ़ गई और वो उनकी अर्थव्यवस्था का जो एक ढांचा होना चाहिए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जनसंख्या का जो एक संतुलित स्वरूप होना चाहिए, चीन उसे खो बैठा। भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक डेटा दिया है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए कि भारत में इसकी शुरुआत 2018 से हो चुकी है और ये कैलकुलेट किया गया है कि 17 साल तक ये लाभांश की हम स्थिति में रहेंगे। इस लाभांश का हम फायदा कैसे उठा सकेंगे, आखिरी में जाकर के ये बातें सुझाई गई हैं, क्योंकि अभी भी कुपोषण के संकट से हम उबर नहीं पाए हैं। इसलिए आप देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कितना नीचे चले जाते हैं और दूसरे कारण भी हैं। तो दोस्तों, 4 साल तो हमने खो दिए हैं, 2018 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 22 खत्म होने को है। आगे की स्थिति को हम कैसे पकड़ सकें, इसके लिए इन्होंने जो तरीके बताए हैं कि हम कैसे गर्भ में ही जब बच्चा है तो उसको एक सही तरीके से पोषक भोजन मिल सके, इसके लिए करें, फिर 18 साल तक उसे उपयुक्त शिक्षा मिल सके, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। दूसरा जो एडिटोरियल कमेंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड का, ठोस पुनर्विचार की जरूरत। ये खासकर हमारे यहां जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको लेकर लिखा गया है और ये अपने आप में छोटा लेकिन कंप्लीट और समीक्षात्मक कमेंट है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, नो डाउट कि अपने आप में बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इससे ऊब रहे हैं। राज्य सरकारें अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, राज्य सरकारों को जो अपना योगदान देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे, यहां तक कि किसान भी बहुत ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं। बकायदे आंकड़े इसमें दिए हैं कि पहले 2,16,00,000 किसानों ने यह योजना कराई थी, इसमें बकायदे आंकड़े दिए हैं और आंकड़े ये हैं कि पहले किसानों की जो तादाद थी वो 2.16 करोड़ थी, जो अब घटकर 1.53 करोड़ रह गई है, और उसके कारण क्या है इसमें बकायदे गिनाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और पॉइंट्स नोट कर लें कि ये जो फसल बीमा योजना है इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स के निराकरण क्या हो सकते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ये जो टॉपिक है अपने आप में यहां कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पर आप नोट्स तैयार कर लें। अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि इस पर बकायदे ऑनलाइन लेक्चर आपको इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, तीसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है और खासकर इस बात को लेकर के है कि हमारे देश में जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी आय में कैसे बहुत ज्यादा आप कह लीजिए असमानता दिखाई देने लगी है और उसके कारण क्या हैं। कुछ एक डेटा जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2036 तक, यानी कि 2011 से 2036 तक का अनुमान था कि लगभग 31 करोड़ बढ़ेगी। जो एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है वो ये है कि ये जो 31 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी इसमें से केवल 9% जो पॉपुलेशन होगी वो साउथ के हमारे जो 5 राज्य हैं वहां से आएगी और बाकी जो पॉपुलेशन होगी, सोच करके देखिए 91% पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ द स्टेट से होंगी। तो यानी कि जो पॉपुलेशन है साउथ के राज्यों ने बहुत अच्छे तरीके से उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो लगातार दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर होता चला जा रहा है। तो आपको एक व्यू इससे मिल सकेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे भी आप ध्यान से पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, भारत और वासेनार व्यवस्था। अखबारों में इस पर आपको पढ़ने को कुछ भी नहीं मिला होगा, लेकिन रेडियो न्यूज में ये खबर थी और बहुत ही छोटे से ही रूप में थी। और इस रूप में थी, आपको मालूम है कि 1 दिसंबर से भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है और खबर इस रूप में थी कि 1 जनवरी से भारत अब वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। उसी संदर्भ में यह बात कही गई थी। और चूंकि हम अध्यक्षता संभालने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं विश्व की शांति से है। कहीं ना कहीं मैंने शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया क्योंकि यह जो व्यवस्था है ये दुनिया में किस तरीके से जो हथियारों का निर्माण हो रहा है, जो हथियारों की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो हथियारों का निर्यात हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उस पर नियंत्रण लगाया जाए, इसको लेकर के तैयार की गई है वासेनार व्यवस्था। जब इस अरेंजमेंट यानी कि ये जो व्यवस्था है, इसकी जो मीटिंग है वियना में हुई थी, तो उस वियना सम्मेलन में भारत को इसका सदस्य बनाया गया था। यह 2017 की बात है। 2017 में भारत इसका 42वां सदस्य बना। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना होगा कि भारत परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है, NPT का सदस्य नहीं है। इस पर भी ऑनलाइन लेक्चर है कि भारत ने क्यों इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अब जो परमाणु संधि और इसको लेकर के और जो दूसरे डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है क्योंकि भारत 1 जनवरी से वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वासेनार व्यवस्था का संबंध हथियारों पर आप कह लीजिए कि नियंत्रण रखने से ही है। लेकिन बात केवल वासेनार व्यवस्था तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हथियारों को नियंत्रित करने वाले अभी दुनिया में मुख्यतः 4 संस्थाएं काम कर रही हैं। इस पर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए और हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वो 4 निकाय कौन से हैं, वो 4 बॉडी कौन सी हैं, आप कह लीजिए संगठन कह लीजिए। एक के बारे में आप जानते होंगे, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लियर की सप्लाई करते हैं, इस तरह का ग्रुप जो 1974 में बना था। आपको ध्यान होगा कि भारत ने भी इसी के आसपास ही अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 में। भारत बकायदे इसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन चीन के विरोध के कारण इसका सदस्य नहीं बन पा रहा है। चीन का तर्क यह है कि भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत ने अभी तक जो आपका NPT है, परमाणु अप्रसार संधि, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और इनका नियम कानून कुछ इस तरह का बना हुआ है कि जब तक सभी देशों की सहमति न हो तब तक आप नया सदस्य नहीं बना सकते। तो चलिए, भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया। लेकिन जो MTCR है, MTCR ये दूसरा संगठन, MTCR मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, आर का मतलब है यहां रिजीम, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, नाम से समझ गए आप, ये मिसाइल्स पर नियंत्रण रखने वाला संगठन है। दोस्तों, भारत हाल ही में इसका सदस्य बना है, हाल ही में इसका सदस्य बना है। इसका सदस्य बनने से अब भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, जब आप इसके सदस्य बन जाते हैं तो फायदा यह होगा कि भारत अब बिना किसी बाधा के दूसरे देशों से हाईटेक मिसाइल्स आयात कर सकता है, खुद भी बना सकता है और बकायदे दूसरे देशों को बेच भी सकता है और इसके साथ ही साथ अमेरिका से वो ड्रोन की खरीदी भी कर सकता है। और भारत कुछ ही समय पहले इस संगठन का सदस्य बन पाया है। अब जो तीसरा है वो है वासेनार व्यवस्था। वासेनार व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे परंपरागत हथियार हैं या ऐसे हथियार या वस्तुएं जिनका उपयोग दोहरे रूप में किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी है उस पर नियंत्रण रखना इसका काम है। और जो चौथा है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। 1985 में इसका गठन हुआ था और जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है इसका जो मूल उद्देश्य है वो है जो रासायनिक और जो जैविक हथियार होते हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाए। 1984 में इराक ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था तो पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई थी कि अब कैसे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सके, इसे रोका जा सके, तब फिर ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों ये चार मुख्य संगठन हैं जो हथियारों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कितनी सफलता मिल पा रही है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि अगर ये संगठन नहीं होते तो आज दुनिया की हालत क्या होती उसका अनुमान तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जब वासेनार व्यवस्था में भारत शामिल हो गया और उसकी अध्यक्षता संभालने जा रहा है तो डेफिनेटली इससे भारत की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी ही, साथ ही यह इंडिकेशन है कि दुनिया कहीं ना कहीं भारत के इस बात को मानने के लिए बाध्य हो गई है कि भारत शांति का समर्थक है और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है भले ही उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न किए हों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं आदित्य कुमार साहू कोरापुट ओडिशा से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, अनीशा वर्मा कोडरमा झारखंड से और अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।